नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आज का यह दशलक्षण पर्व का सोमवार का दिन है। उत्तम ब्रह्मचर्य प्रातः काल मोक्ष तत्व का वर्णन आप लोगों ने सुना। निजमा ही लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थये रही अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय धन्य धन्य है जे जीव नरभव पाय यह कारज किया तिन्ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजवर सुख लिया। दौलत राम जी ने सिद्ध स्तुति छठे ढाल में अंत में की है कि वे धन्य हैं अब तीन काल में किसी भी प्रकार से प्रभावित होकर के तीन लोक में अर्थात संसार में वे अवतार को नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा उन्होंने कार्य किया जिसके द्वारा पुनः पुनः किसी अन्य कार्य को करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और उन्होंने एक प्रकार से मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण कर लिया है। वरण क्या कर लिया है? उनकी ही गले में आकर के उसने एक प्रकार से मालार्पण कर दिया और यह वस्तु स्वरूप है। हमेशा भोक्ता की चुनाव भोक्ता की वरण भोग्या करती है। महाराज श्री ने चूंकि कहीं से एक कथानक को उठा करके जो कि जय कुमार के ऊपर एक ऐसा महाकाव्य का उल्लेख किया है जिसमें जो जय कुमार को वरण करने वाली सुलोचना है और उसने स्वयं वरण कर लिया है और चूंकि यह इतिहास आदि ब्रह्मा आदिनाथ वृषभनाथ भगवान के काल की है और उस समय यह सर्वप्रथम स्वयंवर रचना थी और स्वयंवर रचना का अर्थ यह स्वयं जो भोग्या है स्वयं जो स्त्री है वह पुरुष का वरण कर लेती है। लेकिन बात यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा इस भूमिका पर बनाते हुए कि आज पुरुष की दृष्टि भोग की ओर जा रही है भोग्या की ओर जा रही है यह उस प्रचलन उस प्रथा का एक प्रकार से विरोध है। या तो माता पिता अपने संतान के लिए योग्य वरण चुने अथवा वह स्वयं लक्ष्मी उस लक्ष्मीपति के पास चले जाए, किंतु चूंकि आज ब्रह्मचर्य का वैसे उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है भूमिका बनाने में थोड़ी मेरे भी दुखित तो हो रही थी क्योंकि तीन चार बातें यहां पर हो गई अब कैसे करें हम। तो बात ऐसी है कि वस्तुतः भोग की ओर झुका हुआ वह पुरुष वासना का दास बन जाता है और भोग उसकी ओर ताकने लग जाए वह तीन लोक का नाथ बन जाता है। एक पंथ दो काज, तीन लोक का नाथ भी बनना और तीन लोक की भोग सामग्री उनके पास आ भी जाना। पदार्थों की ओर जो दौड़ है यह इसे कंगाल बना देता है, यह दर दर भटकाने वाला है और जो स्वस्थ रहता है उसके पास मौलिक धन मौलिक संपदा मौलिक सामग्री आ जाती है और वह कहती है कि आपके बिना मेरे लिए अन्यत्र स्थानी कहाँ है। जिनके नासिका को देख करके निशिगंधा भी लज्जा को प्राप्त हो जाती है, जिनकी आंखों को देख करके नील कमल कुछ दिन के लिए सेवा करने की इच्छा करते हैं, जिनकी भ्रकुटियों को देख करके इंद्रधनुष भी अपने धन को खोता हुआ सा लगता है, जिनके विशाल भाल को देख करके बृहस्पति का भाग भी फीका होने लग जाता है, जिनके केशों को देख करके माया भी माया का प्रशिक्षण लेने के लिए आ जाती है, यानी उनके बाल इतने घुंघराले थे, जिनके बाहुओं को देख करके ऐरावत के सूंड भी एक प्रकार से लज्जा को प्राप्त हो जाती है, जिनके अधर पल्लवों को देख करके मूंगे भी गूंगे हो जाते हैं, और जिनके पेट के त्रिवलियों को देख करके क्या कहें हम, अप्सराएं भी लज्जा को प्राप्त हो जाती हैं, जिनके गंभीर नाभि को देख करके वह अमृत कुंभ भी एक प्रकार से शर्मिंदा हो जाता है, जिनके चरणों को देख करके चराचर पूरे के पूरे चरणों में आकर के झुकने को तत्पर हो जाते हैं, जिनके पद नख आवली को देख करके चंद्रमा की चांदनी भी लज्जित होकर के सेवा के लिए तत्पर हो जाती है, जिनके चरणों को देख करके कछुए की वह पीठ भी शर्मिंदा हो जाता है, ऐसे ऐसे विशेषणों से युक्त जिनके कर पल्लव कैसे थे, संसार के लिए अभयदान देने में समर्थशाली थे, और जिनकी करांगुलियां भेंडी की शक्ल वाली थी, सीधी सीधी थी, ऐसे विशेषणों से व्यक्त यह शरीर का न्यास था, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के रणवास में रहने वाली वो प्यारिया रानियां भी जिसके रूप को देख करके मुग्ध हो जाती थी और अपनी लज्जा को भी छोड़ देती थी, ऐसे व्यक्ति एक स्मशान में कायोत्सर्ग में लीन है, उस जो शेष रही एक मोक्ष रूपी लक्ष्मी को अपनी ओर खींचने के लिए प्रयासरत है, आंख मीच करके वह अन्य दुनिया के जितनी भी स्त्रियां हैं उनको वह नग्न समझता हुआ बैठा है या खड़ा है, इसके रूप की ख्याति इतनी फैली हुई थी, लोग देख देख करके भीतर ही भीतर मन में विकल्प करते थे कहीं ये सारी की सारी शहर की महिलाएं इसी की ओर खींचने जाए, और बात ऐसी हुई, बड़े बड़े लोगों की तो बात क्या कहूं, अंतिम जो बड़े राजा होता है उस राजा की रानी भी उसके ऊपर मुग्ध हो गई। अब क्या करें, यह स्मशान में है, चतुर्दशी का दिन है और आज का दिन भी चतुर्दशी का है, फिर क्या कहना, रात हुई और जो ही 10-11-12 बज गए, स्मशान में आप देखते हैं भूत नाचते रहते हैं, वहां पर कोई भी बिजली नहीं रहती है, वहां पर भूतों के हाथ में एक प्रकार से मशाल रहते हैं और इस प्रकार का तांडव नृत्य हो रहा है वहां पर, फिर भी निर्भीकता के साथ तपस्या में लीन है, धन्य धन्य है जय देव नरभव पाय, यह मनुष्य जीवन की सार्थकता है, और भय कोई वस्तु नहीं है, भीतर आत्मा में लीनता आ रही है, और उस समय वहां पर एक दूती आ जाती है, और उसको कह देती है चलो मेरे साथ। ये क्या तप कर रहे हो, इस समय तो एक प्रकार से भोग भोगने का समय है, और इस शरीर को इस प्रकार कष्ट मत दो, इस शरीर के द्वारा उसका भी आनंद लो। और लोग तरसते हैं और आज जो है आपके चरणों में आकर के खड़ी हूँ, चलो जल्दी जल्दी और मेरी रानी को आप पसंद करो। कुछ भी नहीं है, सुन रहे हैं क्या, नहीं पता नहीं, आगे का दृश्य देखना कुछ पता नहीं है, नासा दृष्टि में खड़े हैं, कान होते हुए भी बहरे के समान खड़े हैं। कल आपने सुना था, परसों या सुना होगा कि कान तो होना चाहिए महाराज, बहरे नहीं होना चाहिए। दो बात है, परमार्थ क्षेत्र में कान खुले रहना चाहिए और विषय के क्षेत्र में कान बहरे होना चाहिए। परमार्थ क्षेत्र में आंखें बिल्कुल खुली होनी चाहिए और विषयों के क्षेत्र में वह व्यक्ति अंधा होना चाहिए। परमार्थ क्षेत्र में कर्मों से लड़ने के लिए, उपसर्गों को सहन करने के लिए बाहों में से प्रताप छूटना चाहिए, किंतु दूसरों के ऊपर प्रहार करने के लिए कायर बनना चाहिए। यही स्थिति पूरी की पूरी थी, युवावस्था और तेज ओज, सारा का सारा धन वैभव उसके शरीर में लाया, किंतु उस ओर दृष्टि नहीं है, बहुत पूरी पूरी कोशिश करती है। जब ध्यान भंग नहीं होता है तो उसने अपने कंधों के ऊपर उस व्यक्ति को ले लेती है और वह रणवास की ओर चल पड़ती है। रात के 12 बजे सुनसान है, कोई बोल नहीं रहा है, केवल मौन का साम्राज्य है। और पहले से सब संकेतित, पहले प्रशिक्षित थे, आ जाते हैं, सारे के सारे दरवाजे खुलते चले जाते हैं और सीधा जहाँ पर रानी है वहाँ पर ले जा करके वह रखती है। और मैं आज कृतार्थ हो गई हूँ, आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन कर चुकी हूँ, अब आगे के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये महान सौभाग्य का समय है, इतना तो मेल हमने करा दिया, अब आगे का कार्य आपका है। बस वह चल देती है दूती। फिर कोई भी वहाँ पर पूछने वाला नहीं है, कोई भी सुनने वाला नहीं है, अपना ही अधिकार, अपनी ही सरकार है, कोई कुछ नहीं करने वाला है। सब कुछ कार्य हुआ लेकिन वासना जागृत नहीं हुई। एक तरफ वासना है और एक तरफ उपासना है, एक तरफ जहर है, एक तरफ पीयूष अमृत है, एक तरफ विषय सामग्री है और एक तरफ विषय को भोगने वाला भोगता है लेकिन वह चाह से दूर है। वह भोगने की इच्छा रखता है किंतु वह भोग को चुन करके लेता है। वह भोग, वह उपभोग जो कि उपयोग के लिए योग्य हो, उपभोग उपयोग का एक विषय है, उपयोग अर्थात ज्ञान, और ज्ञान ही पंचेंद्र के विषयों को भोगने वाला माना गया है, इसलिए इसका नाम पुरुष है। और उपयोग उपभोग सामग्री जितनी भी हैं वो सारी की सारी प्रकृति है, लेकिन ध्यान रखना पुरुष में हमेशा वासना पलती रहती है तो संसार का साम्राज्य चलता रहता है। उस दिन से वह संसार फीका फीका नजर लगने लग जाता है जिस दिन पुरुष की आंखों में वासना न हो करके किसी और की उपासना प्रारंभ हो जाती है। और वह कौन सी उपासना है, जो पास है ना, जो पास है उसकी उपासना चालू हो जाती है, तो इर्द गिर्द जो कोई भी सराउंडेड है, घिरे हुए हैं, वो फीके फीके नजर आ जाते हैं। जस्ट वेट वाली बात है, एट द गेट वाली बात है, सब कुछ होकर के भी गेट के भीतर प्रवेश नहीं हो रहा, एंटर नहीं हो रहा, अब क्या करें। आने वाला का अधिकार गेट तक का होता है और गेट के ऊपर गेट कीपर एक होता है, उसको यदि प्रभावित कर दे तो भीतर प्रवेश हो सकता है। फिर भीतर प्रवेश होने के उपरांत अपना ही देश हो सकता है, अपना आदेश हो सकता है, अपना संदेश हो सकता है, अपना ही वेश हो सकता है, सब कुछ अपना हो सकता है, लेकिन वहां पर क्लेश का कोई प्रवेश नहीं हुआ करता। अब कैसे करें, कोई बाध थोड़ी किया जा सकता है। एक बात है, स्त्री को भोग्य माना है और जो भोग्य है उसके ऊपर ही बलात्कार हुआ करता है। भोग्य यदि, भोग यदि पुरुष के ऊपर बलात्कार करने लग जा तो पुरुष का पुरुषत्व समाप्त हो जाएगा। तीन काल में किसी की शक्ति नहीं है वह पुरुष को ताड़ित कर सके, और पुरुष यदि अपने आप में नहीं रहता है तो वह भोग्य को वहां पर समर्पित होना पड़ता है। संसार का खेल उसी वासना के दास पुरुष के द्वारा चलता रहता है, लेकिन संसार फीका पड़ जाएगा, किनारा आ जाएगा उस पुरुष का जिस दिन वासना से वह दूर हो जाता है। बस वासना का पूरा समर्पण हो चुका था उसका, बिल्कुल अब आगे कोई खेल चलने वाला ना था। कि उपासना के सामने आज वासना अपने क्या घुटने टेक चुकी है फिर भी स्वीकार नहीं, फिर भी स्वीकार नहीं। अरे भैया स्वीकार अब क्या, अब तो स्वीकार है। स्वीकार का अर्थ होता है संपदा भी मिलने वाली है, और स्वीकार का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा होता है। श्री में ने धन भी है, श्री माने लक्ष्मी भी है, और श्री में ने एक प्रकार से आत्म वैभव भी है। तीन लोग की संपदा वहां पर फीकी फीकी पड़ जाती है। जब ऊंची चीज सामने आ जाती है तो निचली चीज बिल्कुल फीकी फीकी पड़ने लग जाती है। बहुत तेज वाले बल्ब यदि लगा लेते हैं तो 0 वाट तो अपने कंठ में प्राण लेकर के खड़ा हो जाता है, उसका कोई भी मूल्य नहीं रहता, उसका केवल अस्तित्व भर रह जाता है, लेकिन उस अस्तित्व का दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 0 वाट में आज तक किसी ने अध्ययन नहीं किया होगा, चिंतन भले ही किया जा सकता आंख मीच करके, यही स्थिति हो गई। वह अंत में वासना हार गई, ऐसी हार गई, ऐसी हार गई। कैरम खेलते हैं आप लोग, तो कैरम खेलते हैं तो एक बार हाथ में स्ट्राइक काट और सामने वाले ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, दोबारा उसके हाथ में स्ट्राइक दिया ही नहीं और समाप्त कर दिया, उसका एक भी नंबर नहीं हुआ और इसके पूरा का पूरा हो गए। इसको बोलते हैं लव गेम। ये बहुत कठिन हुआ करता है, एक स्ट्राइक में पूरा का पूरा काम कर जाना और दूसरे के एक भी पीस को होल में नहीं भेजने देना। ये क्या मतलब है, ये मतलब यही चैंपियन हैं। एक स्ट्राइक के माध्यम से एक कटने, दो कटने, डबल ने, ट्रिपल ने, चौबल कट होना चाहिए, चारों कोने में पीस चली जाए और स्ट्राइक अपने पास आ जाए और दूसरे के पीस अपने सामने आ जाए ताकि वह लेने सके अपने पीसों को। ये खेल होता है, बार बार 10-10 बार 20-20 बार स्ट्राइक आ रही है, डबल ड्यू हो रही है, सिंगल ड्यू हो ले, कभी कभी ट्रिपल ड्यू भी हो जाती है, फिर बाद में माइंडेड ड्यू हो जाती है, ऐसी भी स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पर आज तो वासना ने बिल्कुल ही घुटने टेक ली, ऐसे टेक ली, अब खोज सोचती है कि आज हमारा समापन है, वो सोचती है, इसलिए इसको किसी भी प्रकार से अब षड्यंत्र में फंसा देना चाहिए। अब वासना ने अपने ही हाथों से अपनी सारी की सारी काया को छीन लेती है, बड़े बड़े नखूनों के माध्यम से अपने आप के बदन को, अपने आप के रूप लावण्य को छीन लेते ताकि लोग समझ सके इन्होंने इसके ऊपर प्रहार किया। हुआ यही, हाउल्ला हो गया, सब लोग आ गए और वह व्यक्ति वहीं पर खड़ा है ज्यों का त्यों मूर्ति के समान। अब रहस्य कैसे खुले, बड़ा कठिन है। राजा को भी बहुत क्रोध हुआ, मंत्री को भी बहुत मंत्री का पारा भी चढ़ गया। सारी की सारी प्रजा की भी धारणा आज टूटने को है। लोग कहने को डर रहे हैं, अरे भैया ऐसा तो कहना संभव नहीं। लेकिन संभव कैसा नहीं है, सामने 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 जो कुछ है ये गलत थोड़ी है। आप क्या कहें, कुछ नहीं। लेकिन जब अंतिम दंड संहिता आ जाती है और इसको फांसी दंड प्राण दंड देना है और प्राण दंड देने के लिए जा रहे हैं, कई व्यक्तियों के विश्वास आज समाप्त हो गए हैं, कई विश्वासों के श्वास आज बिल्कुल कंठगत हो चुके हैं। कुछ के तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ऐसे ही मुंह में राम और बगल में छुरी वाली बात हुआ करती है। ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग वो बोल रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं, ये तो संभव नहीं है भैया। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं, ये तो कुछ संभव नहीं है, कुछ ऐसा ही लग रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। देखो भैया, दुनिया की दृष्टि है, वह दुनिया दुरंगी मखारे सराय, कहीं खैर खूबी कहीं हाय हाय चलती रहती है। मृदंग का खेल क्या होता है, मृदंग को इधर आवाज आए तो इधर बजाओ, इधर आवाज आए तो इधर बजाओ, लेकिन तबला अलग होती। तबला का अर्थ ये होता है कि एक तर्जनी के माध्यम से उसमें से बोल निकलते हैं, और यदि उसमें से नहीं निकले तो फिर दूसरे ही लाना पड़ता है। लेकिन इधर नहीं निकले तो इधर चलाओ, तो इधर नहीं निकले तो इधर चलाओ। तो यह दुनिया की बात है, दुनिया दुरंगी अनेक प्रकार की बातें करने लगे और इनकी ओर कोई भी नहीं। कोई भी तो हो, कोई नहीं, और वह मौन। हाँ देखो, गुनाह की है इसलिए बोलता नहीं। हाँ ये एक अंतिम पॉइंट है। हाँ बोलने भी छोड़ दिया। हाँ ऐसी बात कैसे बोलते, नहीं देखेंगे वहां पर लाएंगे, लाएंगे। और जब प्राण दंड देने का समय आ गया, किसी को भी यह भरोसा नहीं हो रहा, और जो ही प्राण दंड के लिए आ जाते हैं उस समय सारा का सारा रहस्य खुल जाता है। इसका कोई भी दोष नहीं है, दोष है आपके उस रानी का। क्योंकि आज उस कानून को तो छोड़ दो, उस समय देवता लोग आते थे, आज ये कोई देवता वगैरह तो है नहीं, आज कैसे करें। तो आज भी कानून के माध्यम से बहुत कुछ रहस्य खुल जाते हैं। एक बार छोटी सी कथा हमने पढ़ी थी, इसी प्रकार का रहस्य उसमें भी छुपा हुआ था। और जब जो ही उन ये जो हाथ के ऊपर गालों के ऊपर यूं यूं उन्होंने अपनी उंगलियों से अपने जो है नाखूनों से छीन लिए थे, उसको देख करके वह जो रहस्य को जानने वाला होता है उसने कहा कि इसके मुख के ऊपर तो चिन्ह तो हैं और लकीरें पड़ी हैं, ये बिल्कुल ठीक है, किसी ने ऐसे निर्दयी हाथों के द्वारा ही ये नखुनी इस प्रकार डस गई है। लेकिन बात ऐसी है, कैसी है, स्वयं के द्वारा छीली हुई लकीरों की अंतिम छोर अलग ढंग से होती है और दूसरों के द्वारा छीली हुई लकीरों की अंतिम छोर अलग दिशा की ओर हुआ करती है, ये स्वयं से खींची हुई है। तब मुझे श्लोक याद आ गया, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम स्त्रियश्चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्य। अब आप ये सोचिए, श्लोककार ने कितना बढ़िया सोचा होगा, नृप के चित्त के बारे में हम कभी भी कुछ कह नहीं सकते और कृपण के पास कितना वित्त है हम कह नहीं सकते। अब देखिए ना, अब कितना वित्त था मालूम पड़ गया कि नहीं, 200 से चला। और ऐसे जैसे कहीं कि मंडियां होती ना, मंडी सब्जी मंडी नहीं, कौन सी मंडी, गल्ला मंडी, और वहां से चला 200 से प्रारंभ हो गई बोली। और ऐसे ऐसे हम सोच रहे भैया 2 मिनट 2 सेकंड कहते 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 ये 10 मिनट खींच गई इधर, ये क्या हो गया। और इतने बोलियां चली बोलने वालों को पता नहीं पड़े कितनी बोली चली, इधर चल रही है किसका नाम पूछ रहे और उधर आ रहा। और 200 से लेकर के वह 8000 तक पहुंच गई। लेकिन बोले वाले जो हैं कभी कभी एक दो कहते हैं, लेकिन मंडी में क्या होता मालूम है आप लोगों को, एक दो ढाई, फिर ढाई के उपरांत पौने तीन, फिर पौने तीन के उपरांत 2 रुपए 14 ना, फिर इसके उपरांत 15 ना, और फिर इसके उपरांत 16 ना, देखो चला गया। अब इस प्रकार चलता है, यहाँ पर ऐसा नहीं चला। तो यह कृपण की वित्त की बात है। कुंडलपुर में जब हम थे, बड़े बाबा जी के यहाँ मेला लगा हुआ था कुंडलपुर में, और बहुत सारे लोग अष्टानिक में आए थे। किसी एक बोली बोलने वालों ने एक बात कह दी, देखो बात ऐसी है, आम को जितने जितने आप करोगे उतना उतना वह रस देता है, नींबू को जितने जितने निचोड़ोगे उतना उतना रस देता, उसी प्रकार बानिया को जितने जितने हाँ बैठिए मतलब की बात होती है तो आप लोग कर लेते हैं। सारथी की बात थी, हाँ सारथी की बात हम भी करेंगे कि कैसा होता है रथ, कैसा सारथी। अब इसके उपरांत नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम और स्त्रिय चरित्रम, हाँ मनोरथम क्या निर्माण माना, हाँ ठीक है, कि और स्त्रियों के चरित्र के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, वह स्वयं ही अपनी हार होने के कारण सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप लगा दिया। लेकिन जहाँ पर वासना के लिए कोई स्थान नहीं है, जीत उसी की मानी जाती है, वहाँ पर कोई भी साथ नहीं भी देता है तो साथी अलग होता और सारथी अलग होता है। साथी के साथ चलने से कभी कभी टांग में टांग अड़ जाती है और गिर जाते हैं, लेकिन सारथी के द्वारा कभी भी इस प्रकार का एक्सीडेंट नहीं हुआ करता है। तो वासना वस्तुतः अनंत काल से इस पुरुष को ऐसे गिराती गिराती आई है। अब मालूम पड़ गया पुरुष को, इसी के कारण मेरा ऐसा जीवन पतित हुआ है। लेकिन वह तस्य मस नहीं हुआ, जब उसकी विजय हुई, फूल माला जब गले में पड़ गई, रक्षा हो गई, जय जयकार हुआ और पूजा हो गई, उस समय उस रानी की स्थिति ऐसी हो गई। अब वह राजा देखता है रानी की वो, अरे हमारे इस राज्य में और इस नगर में महान सेठ माना जाता है जिसका नाम सुदर्शन सेठ है, सुदर्शन है कि गॉड आस्था श्रद्धान है, गृहस्थ है, अभी गृहस्थ है, फिर भी इतनी दृढ़ता, भोग सामग्री की ओर दृष्टि नहीं, क्या कहा, मातृवत परदारेशु लोष्टवत परधनम, इसी को बोलते हैं कि वीतरागता, इसी को बोलते हैं वैराग, इसी को बोलते हैं मूर्छा का अभाव, और इसी को बोलते हैं संसार से महान भयभीत होना, अपनी वस्तु को छोड़ करके मैं दूसरे वस्तुओं को कभी भी ग्रहण नहीं करूंगा, मन से भी नहीं, तन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, होश हवास में भी नहीं, ये छोटा व्रत नहीं है बंधुओं, आचार्य महाराज जी ने एक बार कहा था, किसी ने आकर के कहा, महाराज जी मेरी स्थिति तो ये है, एक छोटा सा कोई व्रत दे दो। तो महाराज जी ने कहा, भैया इस बात को पहले बंद कर दो, क्योंकि व्रत कोई छोटा नहीं होता, अपनी शक्ति के अनुसार लियोगी वह व्रत हमेशा महाव्रत रहेगा, क्योंकि शक्ति को नहीं छुपा रहे, शक्ति के बाहर तो कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए, लेकिन शक्ति को नहीं छुपाते हुए कोई भी व्रत है तो वह छोटा नहीं है, पूरे के पूरे संसार के कारणों को निकालने के लिए वह कारण है। पशु पक्षियां भी वृत्ति बन जाते हैं, लेकिन निश्चल्य वृत्ति कहा गया है। यह निश्चल्य व्रत था कि पंच अनुव्रतों को अंगीकार कर लिया था और उनमें ब्रह्मचर्य अनुव्रत भी था। वो सेठ सुदर्शन एक प्रकार से कामदेव के समान थे, उनसे सारी की सारी महिलाएं प्रभावित होती थी, लेकिन उन महिलाओं से वह प्रभावित नहीं होता। प्रभावित इसलिए होती थी रूप को देख करके, लेकिन वह भीतरी रूप को देख लेती तो अपनी इस प्रभावना के ऊपर वह लज्जित हो जाती, लेकिन वह नहीं देख पाती भीतरी रूप को। इसलिए ध्यान रखो, ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य ये खेल नहीं है। आत्मा को जिसने अभीष्ट माना, आत्मा को ही भोग द्रव्य माना, आत्मा ही सब कुछ है ऐसा माना, उसके लिए दुनिया की सारी चीजें फीकी नजर आ जाती है। जिसके द्वारा आत्मा की स्वतंत्रता लुट जाती है, उसके द्वारा कभी भी वह व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि आत्मा के धन को लूटना नहीं। तम्माद कुशीलीय रायम मा पुनः माव संसगम साधी नो ही विनाशो कुशील संसग राय न। बंधुओं, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, वे आत्मा के स्वभाव नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है, आप पाप से तो डर जाते हैं और पुण्य से मुंह फाड़ लेते हैं, क्योंकि पुण्य के द्वारा विषय सामग्री मिलने वाली होती है। जिस व्यक्ति की दृष्टि पुण्य सामग्री की ओर, विषय सामग्री को रहती है, वही पुण्य करना चाहेगा, लेकिन जिस व्यक्ति की उपासना आत्मा की चलती रहती है, वहां पर पुण्य बिछता चला जाता है और अपने आप को महान समझता चला जाता है, फिर भी वह व्यक्ति उस बातों से प्रभावित नहीं होता और अपने स्वाधीनो ही विनाशो, अपनी स्वाधीनता जिसके द्वारा नाश को प्राप्त होती है, उसके अधीन होना हमें पसंद नहीं है। अपनी स्वाधीनता हमेशा खुली रहे, उसी प्रकार के भावनाओं को हमें, उसी प्रकार के क्षेत्रों को हमें, उसी प्रकार के वस्तुओं को हमें अपने साथ रखना चाहिए, जिसके द्वारा हमारी विशुद्धि बढ़ती चली जाए। तो अर्थ ये हुआ, वह अपवाद करने के लिए गली गई, लेकिन अपवाद स्वयं का हुआ और ऐसी सीख उसे मिली, और अंत में उसका बहुत अपमान होने से अन्यत्र चली जाती है, कहीं कुछ भी हो जाता है, छोड़ देता है, राजा भी इस प्रकार के रखने योग्य नहीं है। और अंत में जय जयकार उस सुदर्शन सेठ को होती है। सुदर्शन सेठ ने सोचा है, ओहो कि भैया इस शरीर के द्वारा लोग इतने मुग्ध होकर के आ रहे हैं, हम तो इस शरीर को अब मोक्ष मार्ग में लगाए जाएं और इसको कृष और किया जाए, ताकि लोग भी इससे प्रभावित न हो सके। बनती कोशिश, पैसे से लोग प्रभावित हो जाते हैं, धन सामग्री से लोग प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए पुरुष को हमेशा प्रकृति को सीमित रूप ही रख लेना चाहिए। बहुत धन रखना भी पड़ोसी के लिए एक प्रकार से आप ही कारण बन जाते हैं चोरी की भावना के लिए। दूसरे व्यक्ति की चोरी के भाव जो होते हैं सेठ जी को लेकर के होते हैं, कि ध्यान रखना महावीर भगवान को देख करके आज तक किसी के मन में भी चोरी के भाव नहीं आया। महाराज ये क्या कर रहे हो आप, महावीर भगवान को लेकर के तो बहुत चोर लोग भाग जाते हैं। हाँ देखो इसमें भी बात आ गई, इसमें भी बात आ गई, महावीर भगवान को नहीं, आपने अपनी उदारता को देख करके कहीं सोने के बना लेते हैं, कहीं चांदी के बना लेते हैं, कहीं सोने के पानी उसके ऊपर लेप देते हैं, तो चोरों के मन में भी तो पानी आएगा क्या, नहीं इसलिए उठा देते। लेकिन वस्तुतः भगवान को देख करके कोई भी इस प्रकार नहीं हो सकता। धन्य धन्य है जे जीव नरभव पाए यह कारक। कि सुदर्शन सेठ ब्रह्मचर्य महाव्रत नहीं अनुव्रत था और इतना उनका दृढ़ चारित्र था, दृढ़ व्रत था कि और कोई हो जाता तो वह बिल्कुल पिघल जाता, फेल हो जाता। तो व्रत छोटा बड़ा मत समझो, व्रत तो व्रत है क्योंकि पापों से छुटकारा वह छुटकारा ही है, उससे तो किनारा नियम से मिलता है। छोटे छोटे व्रत कह देते हैं लेकिन वह जीवन में क्रांति ला देते हैं, इसलिए क्रांति जिसके द्वारा आ जाती है वह नियम से बड़ा ही माना जाता है। इसलिए हमें उस स्वभाव की ओर देखना है, जिस स्वभाव को देखने के उपरांत फिर विभाव की ओर हमारे कभी भी दृष्टि नहीं चली जाती। दो मिनट का और मैं समय लेता हूँ, आपका समय हो रहा है। कि एक पिता और उनका एक पुत्र दोनों सन्यासी हुए हैं और विस्मय की बात यह है कि पिता आगे आगे चल दिया और पुत्र पीछे पीछे से आ रहा था, लगभग एक और फरलांग का अंतर था। जब शहर की ओर जा रहे थे दोनों, नहीं पिताजी तो पीछे थे और बेटा जो है आगे था, तो वह बेटा चला गया किनारे पर, रास्ते के किनारे पर एक तालाब था या सरोवर था, सरोवर में जल क्रीड़ा कर रही थी अप्सरा के समान वहां की कन्याएं, और जो ही उनकी दृष्टि उस सामने वाले सन्यासी की ओर चली जाते हैं तो कोई बात नहीं, वह अपने आप वैसे ही स्नान करने लगी। लेकिन पीछे से जो ही वह बड़ा पिता जिसको बोलते हैं वह आ गया, तो ही जल्दी जल्दी वो अपने अपनी साड़ी और वस्त्रों को लपेट ली। तो वह कहता है सन्यासी, अरे तुम लोग कितनी मायाविनी हैं, बड़ों को लेकर के अपनी वासना को छिपा लेती हैं, और वह जो अभी अभी मेरे सामने से गया वो मेरा पुत्र जवान है, और जवान के सामने तो तुमने कुछ भी जुबान नहीं खेली, और जो ही बड़ा और वृद्ध हूं मैं और मुझे लेकर के लज्जा का यह आवरण ले लेती है, ऐसे क्यों करती है। तो वो बहुत सियानी थी, वो समझदार थी, तो वो अध्यात्म को जानने वाली थी। वो कहती है, बाबा सुनो, वो जवान थे क्या वृद्ध थे हम नहीं जानते, उनका वह रूप बता रहा था, उनके लिए अब कोई भी महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं था, और न ही युवती और वृद्धा इसमें कोई अंतर नहीं था, और उनका एक इधर देख भी लेते तो कुछ भी नहीं, और उन्होंने देखा भी लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपको देख करके हमें इसलिए लज्जा आती है कि आप वृद्ध हो गए हैं और फिर भी अभी लंगोटी नहीं खोली आपने, अभी तो लंगोटी पहन करके आए हैं, इसलिए स्वयं आपको ही जब लज्जा और शर्म खा रही है तो हम आपके लिए शर्म खा जाते। तो ये चार पंक्तियां तो अपने आप आ जाती हैं, एक बार लेख पढ़ा था उस लेख से चार पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी, पूरी की पूरी याद नहीं लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, प्रासंगिक है। इसलिए लेकर क्या कहता है, अरे केवल आग के रंग के कपड़े पहने हो तुम, अरे केवल आग के रंग के कपड़े पहने हो तुम, योग की अग्नि में तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं जला है, अभी तुम्हारी दृष्टि में उच्च नीच रूप छुरी लटकी हुई है, तुम्हारे में अभी भेद पनप रहा है, द्वैत की उपासना अभी चल रही है, तुम्हारी यात्रा की शुरुआत ही क्या, अभी यात्रा अंत ही क्या, अभी शुरुआत तक नहीं है, अभी यात्रा दूर नहीं किंतु अभी यात्रा शुरुआत ही नहीं हुई है। और ये ध्यान रखो कि कोई महिलाओं के पीछे भागता हो और कोई महिलाओं से दूर भागता हो, बात एक है। क्या खेल है, कितना आयाम भीतरी है, बाहरी आयाम नहीं है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, नियम सार में ब्रह्मचर्य व्रत कौन सा है, इन उमा स्वामी के सूत्र और कुंद कुंद भगवान के सूत्रों में थोड़ा सा हमने अंतर पाया है। उमा स्वामी के सूत्र संभव है व्यावहारिक सूत्र हैं और कुंद कुंद भगवान के सूत्र परमार्थ के सूत्र लगते हैं। परमार्थ का मतलब निश्चय के सूत्र, ये गलत हैं ऐसा नहीं, किंतु ये प्रारंभिक दशा के वर्णन करने वाले लगते हैं और वह एक प्रकार से ठोस बात, स्वभाव की बात कहने वाले सूत्र जैसे। ब्रह्मचर्य व्रत के लिए देख लीजिए, दट्टुन इति रूपं वांछा भावं निमत्ते तासो मेहुन सन्नावज्य परिणामो अहय तुरीय वदम। दट्टुन इति रूपं, स्त्रियों के रूप को देख करके जो हाव भाव है, उनके स्वभाव है, उनको देख करके, उनके कटाक्षों से छोड़ी हुई तीखे बाणों को सहन करते हुए जो व्यक्ति घायल नहीं होता है, और वांछा भावम निवत्तेतासु, उनमें वांछा को प्राप्त नहीं होता है, वह मैथुन संज्ञा के विजय मानने वाला है और उसके वो परिणाम ब्रह्मचर्य व्रत के माने गए हैं। ये चौथा ब्रह्मचर्य माना जाता है। जो देखे नहीं तो बातें नहीं, लेकिन देखना दो प्रकार का होता है, एक सहज भाव से देखना, और सहज भाव से देखने के उपरांत भी सामने से यदि भाव विकार को भी लेकर के आ जाता है तो कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वीतरागता के ऊपर राग का प्रभाव नहीं पड़ सकता, हाँ वह वीतराग भाव बिल्कुल ठोस होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए, तालीम ही नहीं बहुत मैदान देखा हुआ वह पहलवान होना चाहिए, एक एक लंगोट लांग के ऊपर चार चार कुश्तियां खेले वाले होना चाहिए, नहीं समझे, नहीं तो बार बार लंगोट खोल करके भी दूसरे लंगोट लांग जो पहनना पड़ता है। लेकिन ऐसे भी पहलवान होते हैं, दूसरे पहलवान के हाथ उस लंगोट तक नहीं आ पाता और उसको चित कर देता है, ऐसे तीन चार बार कुश्ती खेल लेता है। दुनिया के पूरे विकार भी आ जाए तो भी निर्विकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, यह स्वभाव की अनुभूति मानी जाती है। अर्थ यह हुआ कि विकार से बचो, निर्विकारता की ओर दृष्टिपात करो, लक्ष्य की ओर जाना यही है। इसलिए केवल संन्यास व्रत धारण करना पर्याप्त नहीं है और केवल शास्त्र स्वाध्याय करना पर्याप्त नहीं है, अपने उपयोग की आप परीक्षा कीजिए, उपयोग में कहाँ तक दृढ़ता आई है, उपयोग कहाँ तक सक्षम हो चुका है, उपयोग में कहाँ तक एक प्रकार से बल उतरा है और उपयोग में कहाँ तक वह धैर्य आया है जिसके सामने तीन लोक की संपदा भी फीकी फीकी पड़ जाए। छोटा है, कोई छोटा नहीं है, अपने क्षेत्र में वह भी बड़ा है। संन्यास का अपने क्षेत्र में बड़ा, लेकिन सन्यासी होकर के भी अब सती न्यास नहीं है। अर्थात जो सत्य में यदि अपने उपयोग का न्यास नहीं किया, अभी पर्याय में अभी उन लहरों में भी अटका हुआ उसका उपयोग है, तो नियम से वह मात खाएगा, नियम से वह विकृत होगा। इसलिए राग आग के अंग के आग के रंग के केवल तुम, अरे अभी कपड़े पहने हो, तुम्हारा काम अभी योग के अग्नि में समाप्त नहीं हुआ है। विकार को छोड़ने का प्रयास करो। महावीर भगवान के दर्शन करते करते वर्षों हो गए, किंतु अभी तक विकार को हटाने का आप प्रयास नहीं कर रहे। विकार का अर्थ केवल वासना ही है, ऐसा नहीं है। बहुत सूक्ष्म विकार हुआ करते हैं। वस्तु को वस्तु के रूप में ही जानो, पहचानो, मानो और उसको अंगीकार करो। यह यदि परिणति हमारे उपयोग की होती है तो हमारा उपयोग ही स्थित प्रज्ञ है, हमारा उपयोग ही वीतरा विज्ञान है, हमारा उपयोग ही स्वरूपाचरण चारित्र है, हमारा उपयोग ही मनुष्य जीवन का सही सही उपयोग है। अन्यथा वह दुरुपयोग। दो पंक्तियां जो कि एक वीरायन पड़ा था, जो महावीर भगवान के निर्वाण महोत्सव 2500वां हो रहा था, उस समय किसी एक महाकवि ने लिखा था, जो कि जैनेतर है, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने प्रयोग किया। दो पंक्तियां, तो दो पंक्तियों के साथ हमने अपनी तरफ से एक दो पंक्तियां जोड़ दी हैं। चार लाइन आपके सामने हैं। जब पर्वत ही बना फिर धूप से क्या, जब पर्वत ही बना फिर धूप से क्या, जब साधु ही बना फिर धूप से क्या। बहुत अच्छी पंक्तियां मुझे ये लगी कि साधु बना तो फिर धूप से इत्यादि से भी मतलब नहीं रहना चाहिए, और भूख से अर्थात कोई सेठ सौ का राजा तो कहां से आए आप, और कोई सामान्य व्यक्ति आ जाता है तो उधर देखना भी नहीं, नमोस्तु कर देता तो यूं कर देना, तो ये नहीं होना चाहिए। इन पंक्तियों में कि वीतरागता है क्या नहीं, इसके लिए व्यंग लिखा गया है। जब पर्वत ही बना फिर धूप से क्या, जब साधु ही बना फिर धूप से क्या, जब सागर ही मिला फिर कूप से क्या, जब सागर ही मिला फिर कूप से क्या, जब स्वरूप ही मिला फिर रूप से क्या। महावीर भगवान की।